जब मैं एक बारी पाकिस्तान में थी, कराची में एक यूथ ग्रुप के साथ मुलाकात रही, तो इट वॉज अ स्मॉल ग्रुप, अबाउट 30 पीपल, और दिस वॉज इमीडिएटली आफ्टर द फ्लड्स। मैं समझती 2 साल पहले जबरदस्त फ्लड्स आए थे कराची पाकिस्तान में, और खास उसमें सिंध, कराची भी सिंध में ही है, तो सिंध प्रोविंस में बहुत बहुत नुकसान हुआ था। और इसी यूथ ग्रुप ने बहुत सारा वहां सेवाएं की थी, तो इस कारण से अपने संपर्क में आए थे। तो वो लोग, उनकी जो आउटरीच थी, इट मस्ट बी अ फ्यू थाउजेंड, परंतु ये जो स्वयं थे उस समय हाजिर, अबाउट 30 द मेन कोऑर्डिनेटर्स। तो टॉपिक चला था करप्शन, और उन्होंने ये कहा कि हम समझते हैं कि करप्शन समाप्त हो सकता, और भारत में तो इस बात का बहुत प्रचार हो चुका है करप्शन की बात कर, परंतु वहां पर कराची में तो एवरीथिंग थोड़ा और एक्स्ट्रा दियो, थोड़ा और एक्स्ट्रा दियो तो काम चलेगा, नहीं तो काम ही रुक जाता। और जो लॉ इन्फोर्सर्स है, पुलिस, वो खुद ही ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ देंगे तो आपका कार्य चलेगा, इट्स द नॉर्मल सिस्टम। तो उसमें जो 4-5 लोग थे वो कहते थे कि करप्शन फिनिश होनी चाहिए, और उनके साथ कुछ 2-3 बुजुर्ग आए हुए थे, बुजुर्ग नॉट ओल्ड बट आई मीन दे वर इन देयर 40s, तो जो उनके साथ कार्य करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इट्स इम्पॉसिबल टू रिमूव करप्शन। और उसमें 4 नौजवान लोगों ने अपने जीवन का एग्जाम्पल दिया। एक बहन थी, उसने कहा कि उसके बाप ने शरीर छोड़ा और उसके बाद जिम्मेवारी घर की सारी उसके ऊपर ही आई, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी लीगल कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल की बातें होती है जब ऐसी सिचुएशन कोई होता। तो कहती है कि मैंने ये संकल्प रखा था कि मुझे किसी को भी इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है, क्योंकि एक बारी देने से फिर और भी एक्सपेक्ट करते रहते हैं और वो सिस्टम चलते रहेंगे। तो मैंने ये पक्का अपना फिक्स्ड प्रिंसिपल रखा कि मुझे नहीं देना है, और उस हिसाब से मुझे कुछ बातें कठिनाइयां भी फेस करनी पड़ी, परंतु मेरा कार्य सफल रहा। एक भाई ने कहा कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेनी थी, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी यही कारोबार थी, तो मैंने ये सोचा कि बेशक मैं कार बिगड़ चलूंगा, परंतु मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं होना है। तो ऐसे कुछ कुछ लोग बताते रहे अपना एक्सपीरियंस, तो मैं देखती थी कि वैसे लोगों को जो सिस्टम है वो चल रही है, वो समझते हैं कि क्या कर सकते, परंतु जो यूथ है उनके अंदर होता कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट अ सिस्टम व्हिच इज करप्ट, इट्स पॉसिबल टू चेंज इट एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट। तो उनके अंदर ये बिल्कुल पक्का संकल्प था कि अभी हमको ये सिस्टम चेंज करनी है। तो मैं क्यों ये एक एग्जांपल बता रही हूँ कि यंग पीपल ही कुछ और विश्व का उद्धार कर सकते, यदि उनके अंदर ये एक भावना आती कि हमको कुछ नई सिस्टम बनानी है, तो वो यदि एक व्यक्ति को संकल्प आया परंतु एक व्यक्ति के साथ 10 मिल जाते, 100 मिल जाते, 1000 मिल जाते तो एक रेवोल्यूशन बन जाती। मैं समझती इट्स टाइम फॉर अ रेवोल्यूशन। आप क्या समझते? जिस तरह से संसार चल रहा है, और न सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान की बात है, एको आ रहा है साउंड वाला, तो न सिर्फ दो देशों की बात है, परंतु लास्ट ईयर मुझे एक थोड़ा सा आश्चर्य लगा, क्योंकि थियोरी में तो मालूम है कि आज कलयुग चल रहा और कलयुग के अंदर जो कुछ हो रहा सब तरफ वही बातें होंगी, परंतु प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। परंतु लास्ट ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर करप्शन बिग टाइम, और साथ साथ पुलिस के अंदर करप्शन, बीबीसी के अंदर भ्रष्टाचार, मीन्स जिमी सैवल, आप लोगों ने ये केस सुना है? मुझे मालूम नहीं है कि ये सिर्फ नेशनल न्यूज है या इंटरनेशनल न्यूज है, परंतु एक बहुत प्रसिद्ध डीजे था, और अभी तो उसको शायद 5-8 साल हो गए हैं, देह का त्याग भी कर दिया, परंतु उसका नाम बिल्कुल बहुत ही प्रसिद्ध था, और उसकी जो करियर है करीब 25 साल 30 साल तक चलती रही। मीडिया में कम ही लोग होते हैं जिन्हों की करियर 25-30 इयर्स तक चले, अदरवाइज वन डे दे हियर टुमारो दे गॉन। परंतु कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हों का बहुत समय तक चलता, तो जिमी सैवल वाज वन सच पर्सन। फिर उसका पता चला, एक कहानी निकली, दूसरी कहानी निकली, अब चाइल्ड मोलेस्टेशन, उसका कितनी कहानियां निकली, निकलती गई, आज तक भी निकल रही है। और फिर उसका सारा बीबीसी के एस्टेब्लिशमेंट पर इंपैक्ट हुआ, कारण कि ये संभव ही नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ इस तरह से करता रहे। जरूर अनेकों को मालूम होगा, और उन्होंने सोचा कि चलो चलने दो। तो मीडिया, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, 2 साल पहले एक दिन मैं पढ़ रही हूं दैट देयर्स अ प्रॉब्लम, ट्यूसडे वीकेंड तक द न्यूज़पेपर हैज फिनिश्ड, और ये न्यूज़पेपर 125 इयर्स तक एस्टैब्लिश था। तो आज का आया गया ऐसी बात नहीं थी, ओल्ड एस्टैब्लिश्ड। तो कहने का मतलब कि ब्रिटेन में जो भी एस्टैब्लिशमेंट के मुख्य पिलर्स है, पार्लियामेंट, पुलिस, मीडिया, बिजनेस में तो करप्शन चलता है, इट्स अंडरस्टूड, परंतु ये जो है उन्हों का सारा ही पब्लिक का विश्वास चला गया। तो मैं क्यों ये बात कह रही, क्योंकि विश्व के अंदर, ये तो मैंने आपको 3 देश का एग्जाम्पल बताया, अमेरिका की बातें क्या कम होंगी। तो जगह 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 ये जो बातें चल रही है, जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है, जिन्हों को वहां से प्राप्ति हो रही है, वो कभी नहीं रेवोल्यूशन करके उसको चेंज करेंगे, क्योंकि दे स्टैंड टू बेनिफिट, लॉजिकल। मैं इंडियन पार्लियामेंट की क्या बात आपको बताऊं, परंतु जब जब कोई केस शुरू होता और फिर वो रोक लेते हैं, कारण their position, their prestige, their finance is at stake. तो वो नहीं करने देंगे, understood, नहीं करने देंगे। तो यदि हम कुछ और संसार चाहते हैं जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स हो, कुछ सत्यता हो, कुछ विश्व के लिए या अपने समाज के लिए सेवा भावना हो, कौन करेगा? आप लोग करेंगे? जिनों के पास आजकल अभी कोई पोजीशन नहीं है, जिनों के पास आज तक अपना कोई उस तरह से प्रेस्टीज नहीं है, तो आप लोग ही तो करेंगे। परंतु कब करेंगे? मैं आपको अपनी एक और कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 14 साल की थी, हम लोग इंग्लैंड में माइग्रेट हुए थे when I was 8, और उस समय भी ब्रह्मा कुमारी का परिचय था। ब्रह्मा बाबा मामा से मुलाकात हुई थी, 1957 की बात है। और फिर हम लोग चले गए, फिर कुछ वर्ष लगे वहाँ हमारे पिताजी को एस्टैब्लिश होने में, और उन दिनों में कोई ट्रैवलिंग इतना तो सहज नहीं था। फिर हम लोग वापस आए 1964, और तब तक हमारी आयु थी 15। और जिस समय मैंने, और था जुलाई, क्योंकि लंदन का जो एजुकेशन सिस्टम है, जुलाई मास में छुट्टियां होती, यहाँ पर अप्रैल में, वहां पर जुलाई। तो जुलाई मास हम बॉम्बे पहुंचे, और वो समय होता है मॉनसून्स। जैसे ही एयरपोर्ट से हम शहर में गए, इतनी बारिश, परंतु उसमें आज तो झोपड़पट्टी के बिल्कुल शहर बने हुए हैं। उन दिनों में इतना झोपड़पट्टी का उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं था। उस समय क्या था, उस समय रोड पर ही वो जगह जगह पर अपना स्थान बना लेते थे, और एयरपोर्ट से जो रोड चलता सारी झोपड़पट्टी बाजू में, और उनका मकान बना हुआ था कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड में आप समझ सकते हैं कि पानी में फिनिश, उनका घर सारा ही फिनिश। तो वो रोड साइड पर बैठे हुए थे, तो उस समय तो मुझे बहुत शॉक लगा। तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, फ्लाइट्स उन दिनों में पहुंचती थी मिडनाइट। सवेरे मैंने अपने जो फैमिली थे, फैमिली मेंबर्स, उनको कहा कि मैं वापस लंदन जाने चाहती हूँ। तो यू कैन इमेजिन, उन्होंने तो बिल्कुल छुट्टी देंगी। तो पूछा कि क्यों, तो मैंने बताया कि जिस देश में ऐसे हमने सीन देखी है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो एनीवे, फैमिली प्रेशर और ये वो बातें, और फिर हम लोग एक दिन के बाद पूना चले गए। और पूना में आजकल तो नहीं मालूम, परंतु उन दिनों में इतनी ब्लेटेंट पॉवर्टी उस तरह से नहीं थी जितनी कि बॉम्बे में आजकल तो शायद होंगी। तुम थोड़ा सा, दो सप्ताह शांति से बीता, फिर हम वापस आ गए। बट दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि दो संकल्प उस घड़ी मैंने किया। एक संकल्प मैंने किया कि मेरी जीवन मेरे लिए सिर्फ न हो, नॉट जस्ट फॉर माई ओन कंफर्ट एंड फॉर माई ओन ग्रेटिफिकेशन, परंतु कुछ सेवा के लिए होनी चाहिए। और दूसरा संकल्प आया, मुझे उस समय ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मैंने सुना नहीं था। पेरेंट्स आते थे, ग्रैंड मदर आती थी, परंतु कहीं यहाँ होंगे जो बचपन में इस तरह से कनेक्शन में रहे, परंतु कोई ज्ञान नहीं सुना होगा। परंतु मुझे ये एक बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी लगी कि मुझे इस संसार में अपने तरफ से बच्चों को नहीं क्रिएट करना है। बच्चों को मैं क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही हूँ, किस प्रकार से संसार में मैं बच्चों को ला रही हूँ। आई वॉज 15 और जब मैं कोई ऐसे आमतौर से ये बातें तो सुनाई नहीं जाती, परंतु जब कोई इंटीमेट फ्रेंड्स होते थे, 5-6 लोग होते थे, उन्हों के साथ में बात करती थी तो उनको ये बातें, दोनों बातें मैं बताती थी कि ये मेरा अनुभव रहा भारत का। तो उन्होंने तो बहुत करके, आई वॉज द ओनली इंडियन गर्ल एट स्कूल, क्योंकि 1964 तब तक कोई इंडियन इमिग्रेशन उस तरह से नहीं हुई थी, तो वो तो सभी यूरोप घूमे थे, अमेरिका घूमे थे, परंतु they'd never gone to a third world country। तो उस समय ये मुझे था कि they couldn't understand, वो लोग तो बिल्कुल समझ नहीं पाते थे कि where are you coming from। और फिर जब ड्रामा अनुसार, डेस्टिनी अनुसार ये मुझे संकल्प आया कि मुझे समर्पण होना है, और दादी जानकी उस समय पूना की हेड थी और मेरी ग्रैंड मदर पूना में रहती थी, तो दादी को मैं बचपन से जानती थी, तो दादी को ये मैंने अपना संकल्प बताया कि मैंने क्लासेस शुरू किए थे, और फिर दादी को ये बताया तो दादी ने कहा कि तुम ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखो। बाबा इंग्लिश पढ़ते भी थे, क्योंकि मुझे हिंदी तो नहीं आती थी, इंग्लिश पढ़ते भी थे और कुछ थोड़ा बहुत बोलते भी थे। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, नेक्स्ट डे बाबा ने टेलीग्राम भेजा। आजकल तो टेलीग्राम्स का जमाना ही नहीं है, उन दिनों में टेलीग्राम भेजा, और फिर टेलीग्राम में ये था कि जनक, बाबा दादी जानकी को जनक कहते, जनक इज कमिंग टू आबू, कम विथ हर, वी विल डिस्कस पर्सनली। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बहुत अच्छी बातें हुई, बाबा ने बड़ा प्यार से स्वीकार किया, ये तो ठीक है। फिर एक दिन बाबा कहते, बच्ची ऐसे हो सकता कि संसार से गरीबी हट जाए? फिर बाबा कहे, ऐसे हो सकता कि हर इंसान को अच्छी तरह से भोजन मिले? फिर थर्ड क्वेश्चन, क्या तुम समझती हो कि ऐसे हो सकता कि कभी किसके पास बीमारी ना आए? तो आई वॉज 19, बाबा वॉज 1968, तो बाबा तो उस समय 92 के थे करीब। तो बाबा ने उस समय मुझे देखा और मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं थे, इट वॉज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो बाबा ने फिर मुझे कहा कि हाँ बच्ची, हो सकता, गरीबी हट सकती, भूख भी हट सकती और बीमारियां भी हट सकती, ऐसे संसार बन सकता जिसमें ये कुछ भी ना हो, परंतु उसका कारण समझना होगा। उसका कारण क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब ये चीजें संसार से मिट जाएंगी तो ही फिर ऐसे संसार बन सकता, परंतु कभी भी तुम किसी और को नहीं कह सकती कि तुम अपने क्रोध और लोभ और मोह को हटाओ। वो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुमको खुद पहले अपने अंदर ये परिवर्तन लाना होगा और अपने अंदर जो ये सब विकार है उनको हटाना होगा। जब तुम अपने ज्ञान और योग से इस बात पर पुरुषार्थ करके ये बात का परिवर्तन करेंगे तो ही फिर और आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे या आपको देख करके औरों को भी प्रेरणा मिलेंगी कि हम भी ऐसे कुछ करें। तो ये 1968 की बात बाबा के ये महावाक्य। तो मैं आप लोगों को ये क्यों कहानी सुना रही हूं कि जब आप चाहते हैं कि संसार के लिए हम कुछ करें और आप चाहते हैं कि संसार कुछ और अच्छा बने, तो वेयर डस इट बिगिन? पहले तो अपने साथ ही बात शुरू होती, फिर हम औरों की कुछ सेवा कर सकते। तो मैं देखती हूं कि कई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती और थोड़ा समय तक वो कार्य करती, फिर उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती जो वो और आगे कार्य कर सके। परंतु अभी जबकि आप खुद अपने अंदर ये कुछ कार्य करेंगे परिवर्तन का, तो ये विश्व तक की बात पहुंच सकती। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सेवाएं कर रही है विश्व में कुछ मदद करने के लिए, और वो जो यूथ है वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हम लोगों का 5 साल से ये कार्य चल रहा है और जो ओरिजिनली, और ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट, और जो ओरिजिनली हम लोग थे, हम लोगों में बहुत भावना थी कि हाँ कुछ करें कुछ करें। परंतु अभी जो नेक्स्ट जेनरेशन लीडरशिप की आ रही है, हम देखते हैं कि देयर्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। वो आपस में वो एकमत होकर के नहीं कर पा रहे हैं, हम और आगे के लिए कैसे करेंगे। हम लोगों को आप लोग कुछ ऐसी ट्रेनिंग दियो जो ये कार्य और आगे चलता रहे। तो कहने का मतलब कि कितना भी सुंदर विजन हो, कितना भी जबरदस्त विजन हो, परंतु जब तक अपने अंदर हम चेंज नहीं लाते हैं तब तक वो विजन कभी भी सफल नहीं हो पाता। विजन को लाने के लिए चाहिए एक्शन, और जब तक एक्शंस हमारे अच्छे उस तरह से श्रेष्ठ सुंदर नहीं होंगे तो वो विजन कुछ काम का नहीं। तो हम अपने अंदर परिवर्तन फिर कैसे ला सकते? हाँ, आपस में मिलते हैं, संगठन करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसमें जो एनर्जी जेनरेट होती है, कोऑपरेशन आता है, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट। परंतु इट्स नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि इस तरह का संगठन, डिस्कशन ग्रुप या कुछ भी हो, आप कब तक मिलेंगे? कब मिल सकते? सप्ताह में एक बारी मैक्सिमम, प्रोबेबली नॉट, मास में एक बारी, 3 मास में एक बारी। परंतु यदि हमने ये जो अंदर का फ्लेम है, द फ्लेम ऑफ होप, द फ्लेम ऑफ कंपैशन, द फ्लेम ऑफ डिटर्मिनेशन, यदि अंदर के ये जो भावनाएं हैं हम यदि अपने अंदर पावरफुल रखने चाहते हैं, ताकि जो बाहर की हवा है वो इस ज्योत को बुझा न देवे, उसके लिए चाहिए अपना खुद का पुरुषार्थ। एंड देन उसमें थोड़ी फिर सुस्ती आ जाती है कि क्या हमको रोज ये बातें सोचनी होंगी। एवरी डे वी मस्ट मेडिटेट, एवरी डे वी हैव टू स्टडी स्पिरिचुअल थिंग्स, दैट्स टू मच। बट रियलिटी ये है कि जो बाहर के जो फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्सेस कितने शक्तिशाली है, दैट्स द मेजॉरिटी। और यदि आप अंदर अपने कुछ शरीर से या क्लास में आकर के संगठित रूप में ये बातें स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर जो बाहर के फोर्सेस है उसको समाप्त ही कर लेंगे, उस ज्योत को बुझा ही लेंगे। तो इस ज्योत को जागने के लिए कीप इट अलाइट हर रोज, अपना अटेंशन, अपनी स्टडी और अपना अभ्यास। आप लोगों ने शायद पीटर सेंगे का नाम सुना होगा, नहीं? विदेश में तो ही इज वन ऑफ द बिग, द टॉप, नॉट जस्ट स्टेट बट द टॉप मैनेजमेंट गुरु। और उसने कई ऑर्गेनाइजेशंस का टर्न अराउंड किया है, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। और 16 साल से वो हम लोगों के साथ हर वर्ष एक डायलॉग करता है, और उस डायलॉग में कई बातें, बहुत पहले तो बाहर की बातें हम सोचते थे, लीडरशिप आदाद, परंतु आजकल धीरे धीरे वो चेंज होता गया है। और अभी हम टॉपिक लेते हैं कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिस, ये सब टॉपिक्स, सो बहुत फर्क पड़ गया है। तो अभी हमारी टॉपिक थी कॉन्शियसनेस एंड प्रैक्टिस। तो उसमें टीचर ये बात बता रहा था, वो हर रोज कितना भी वो बाहर की सेवाएं करता, अपने लिए साइलेंस का टाइम जरूर बना करके रखता। वो कहता है कि यदि मैं अपने लिए वो साइलेंस का टाइम न बनाऊं, तो हमारी थिंकिंग में क्लैरिटी कैसे आए, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसे एक्यूरेट चलता रहे, हमें जो संसार में लोगों के साथ व्यवहार करना होता, उसके साथ मैं हर प्रकार से एडजस्ट करके कैसे चल सकूं। तो अपने अनुभव से बहुत सारी बातें साइलेंस का बताता, परंतु उसने भी खास उसकी बहुत सारी बातें प्रैक्टिस के लिए बताई। और फिर हम लोगों से भी पूछता है कि आप लोग अपनी बताओ कि आप लोग क्या प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस में अपना सवेरे अमृत वेले का योग, प्रैक्टिस में हर रोज ज्ञान सुनना, स्टडी करना, परंतु दिन भर अपनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में एक तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल, परंतु साथ साथ प्रैक्टिस में न सिर्फ ये एक्सटर्नल बातें, ये एक्सटर्नल बातें हैं एक साधन जिससे हमें और अटेंशन मिले। मानो कि ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूजिक बजता और आप उस समय कुछ और बातें सोच रहे हैं, तो उसको कोई प्रैक्टिस नहीं कहेंगे। परंतु ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूजिक बजे और उस समय जिस भावना से ये बनाया है सिस्टम, आप साइलेंस, न सिर्फ मुख का साइलेंस परंतु मन का साइलेंस, आप मन का साइलेंस ऑब्जर्व करके फिर उस घड़ी आप ये प्रैक्टिस करें, सोल कॉन्शियसनेस, कनेक्शन विद गॉड एंड योर ओन हाईएस्ट वैल्यूज, जो आपके अंदर जो सुख, सत्यता, शांति, पवित्रता है, उसको आप इमर्ज करें। तो उससे क्या होगा, कि जो और आगे का समय होगा वो आपको और अच्छा बीतेगा। तो प्रैक्टिस की बातें ये सब आती, परंतु प्रैक्टिस के लिए भी नियम बनाना पड़ता। तो नियम बनाते हैं तो फिर उसमें फिर अपनी प्रैक्टिस अच्छी होती, तो उसमें फिर जो अपने अंदर चेंजेस आती जाती है वो न सिर्फ हमें मालूम पड़ता कि हाँ हम तो बहुत चेंज हो गए, परंतु आपके चेंज का प्रूफ क्या है और लोगों को आपको कहे कि यस यू हैव चेंज्ड। हम खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देवे यस आई चेंज्ड अ लॉट, इज दैट गुड इनफ। परंतु और लोग आपके लिए कहे यस दिस पर्सन रियली हैज बिकम सो काम, दिस पर्सन रियली हैज बिकम सो कोऑपरेटिव, आदाद आदाद। तो जबकि और आपके लिए सर्टिफिकेट देंगे तो कहेंगे कि हाँ वास्तव में आपका चेंज रियल है। और जो आपके अंदर चेंज होगा उसका इम्पैक्ट औरों तक भी पहुंचेगा जरूर, और उस आधार पर हाँ जो हम ये संकल्प रखते हैं, स्वप्न रखते हैं, विजन रखते हैं कि संसार और अच्छा बने, डेफिनेटली देन अ बेटर वर्ल्ड कैन कम। तो मैंने आपके साथ कुछ अपने अनुभव की बातें बताई है, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स यू वेलकम टू आस्क।
आपका सबसे श्रेष्ठ आज तक का आध्यात्मिक अनुभव सुनना चाहते
हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ जो अनुभव रहा वो तो बहुत विशेष रहा, परंतु आप कहेंगे कि वो तो आजकल हमें तो उस तरह से नहीं हो सकता। परंतु प्रैक्टिकल में अभी एक बात जो चली उसका मैं आपको बताती हूँ। दादी जानकी जब लंदन में आकर के पहुंची, इट वॉज द एंड ऑफ अप्रैल, और आज दादी लास्ट दिन है, बीच में टोरंटो और न्यूयॉर्क का भी चक्कर लगा, और फिर कल शाम को दादी निकलेंगी दुबई के लिए। तो दादी जैसे ही पहुंची, दादी को एक बहुत पक्का संकल्प था कि वैसे तो जो संगठन होता, आप समझ सकते हैं कि सवेरे के क्लास में करीब 300 भाई बहन होते और हम करीब 50 भाई बहन है, संडे के क्लास में तो करीब 400-500 होते, परंतु जो मुख्य सेवा करने वाले हैं वो करीब 40-50 लोग हैं। मीन्स कई घरों में भी रहते परंतु सेवा में पूरे मददगार है आदाद। तो उसमें किसका कुछ स्वभाव, किसका कुछ संस्कार, ये तो हर जगह होता ही है, इट्स नॉर्मल। तो दादी का ये बहुत जबरदस्त ये संकल्प था कि ऐसे संगठन हो जिसमें बेशक हर एक पुरुषार्थी है और किसके कुछ गुण है, किसके कुछ ऐसे कुछ और भी बातें हैं, परंतु हर एक के मन में सबसे श्रेष्ठ भावना हो और उसमें बिल्कुल ये पक्का हो कि हम हर एक के गुणों को देखेंगे और कोई भी बात नहीं देखेंगे। तो मैंने इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान रखा कि मैं एक विशेष आत्मा है जिसका सेवाएं भी बहुत है, परंतु फिर कुछ स्वभाव भी ऐसा कुछ तेज है। तो मैंने ये संकल्प रखा दादी के भावना से, क्लासेस सुनने से, कि मैं ये अभी एक्सपेरिमेंट करेंगी कि मैं कुछ भी वो करे, कुछ भी वो कहे, मैं वो बातें नहीं देखेंगी, मैं सिर्फ उसके गुणों को देखेंगी। और मैं और बातों पर बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। तो इस मास में मैंने ये खास विशेष ध्यान रखा और मैंने देखा कि अभी लास्ट में मैं कल निकल रही थी, दोपहर का समय था, तो वो खास मेरे पास आई बातचीत करने के लिए। 6 weeks ago वो तो दूर से ही चले जाती थी, वो मेरे पास आती नहीं थी बातचीत करने, परंतु कल वो मेरे पास खुद ही सामने आई कुछ बातचीत करके मुझे छुट्टी देने। तो मैंने देखा कि किसी भी प्रकार का आप एम रखो और स्पिरिचुअल हिसाब से आप कुछ भी बात का प्रैक्टिस करो, तो उस प्रैक्टिस का आपको बहुत जल्दी में उसका रिजल्ट नजर आएगा। तो ये तो एक अभी का रीसेंट एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, परंतु बाबा के सामने तो बाबा एक तो कभी ये मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये मेरी जीवन इस तरह से बनेगी, क्योंकि सब कुछ जीवन में ठीक था, there was nothing wrong, everything was very comfortable, everything was going my way, परंतु बाबा की दृष्टि आपको इस देह से ऐसे एक और संसार का अनुभव कराती है, एक और जगह में बाबा मुझे दृष्टि द्वारा लेके गए, जिससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बिल्कुल आत्मा का परमात्मा के साथ किस तरह से अनुभव होता। और आज तक भी मुझे मालूम है कि जो अपनी दादियां हैं वो भी जब दृष्टि देते हैं, योग का वातावरण होता और वो दृष्टि ऐसे देते, कईयों को इस प्रकार का अनुभव होता। परंतु उस पर मैं और भी एक बात कहेंगी कि न सिर्फ बाबा, न सिर्फ दादियां, परंतु यदि कोई भी इस प्रकार से अपना पर्सनल अभ्यास करे, सोल कॉन्शियस रह करके साइलेंस का वो आंतरिक अनुभव करके आप औरों को भी उस तरह की सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस की दृष्टि दियो, उनों को भी बहुत एक विशेष अनुभव हो सकता।
ओम शांति। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं, इसी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप ब्रह्म कुमारी को, हमारे हिंदुस्तान के ज्ञान को पूरे यूरोप में फैला रहे हैं, आप उसके एक तरह के अध्यक्ष हैं और आप काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं यूनाइटेड नेशंस से। इनफैक्ट मैं नेट पे आपका बारे में थोड़ा सा देख रहा था, मैं इतना इम्प्रेस था उसको देख के, मुझे लगता कि आज एक रियली में महान आत्मा यहाँ आई है। मैं अपने सारे काम छोड़ के यहाँ आया सिर्फ आपके दर्शन और आपको सुनने के लिए। और अगर आप कुछ बता सकें आपके यूनाइटेड नेशंस के कॉन्टेक्ट से ये विश्व में आप किस तरह शांति फैला रहे हैं, और ये थोड़ा सा जो आपने अभी साइलेंस के बारे में बताया था उसको भी थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। धन्यवाद। ओम शांति।
1980 में जब यूनाइटेड नेशंस में हमने देखा कि वो चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी के भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनों की एम्स सेम है, मींस शांति, विश्व में शांति रखने की उनों की एम और अपने कार्य की एम सेम है, तो फिर हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है उनों के साथ संबंध जोड़ के फिर एनजीओ के रूप में उनों के साथ सेवाएं की। रामानुसार 1982 में यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा कार्य था, तो उसमें एक बहन जो एनजीओ के मेन इंस्ट्रूमेंट है, साली स्विंग शैली, वो आई थी, तो उसका दिल्ली का अनुभव इतना विशाल रहा था। आशा बहन को याद होगा, वो शायद रेड फोर्ट में था, बहुत बड़ा कार्य शांति का। उसने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग सब शांति के लिए इस तरह से इकट्ठित हो सकते। फिर आगो में भी गई और बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो फिर वो जैसे कि मैसेंजर बन गई और वो बहुत औरों को भी बताती रही अपना अनुभव। फिर 83 में हम लोगों को कंसल्टेटिव स्टेटस मिला ऑन द रोस्टर। और फिर 1998 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ECOSOC इकोनॉमिक सोशल काउंसिल उसके अंदर करीब मैं समझती 30-40 कंट्रीज गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे। तो उनके सामने हमारी एप्लीकेशन आई कि हम लोग अभी जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस के लिए ट्राई कर रहे हैं। और फ्रॉम द रोस्टर टू द टॉप वाज अ बिग जंप। परंतु जो सेवाएं हुई थी उसमें से क्योंकि फ्रॉम 1980 टू 98 में हम लोगों की शांति के लिए, माताओं के लिए, यूथ के लिए, ओल्ड एज के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एनवायरमेंट के लिए, इन सब के लिए सेवाएं चल चुकी थी। तो फिर वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड था। और उसने पांच देशों ने इंडिया, कोस्टारिका, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स और एक और था मैं भूल गई, तो उन सभी ने सपोर्ट किया। तो आप सोचो कि देयर मस्ट बी मेनी थाउजेंड्स ऑफ एनजीओस। परंतु उस समय सारे थाउजेंड्स में से देयर वर ओनली 400 एंड अराउंड 28 ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर गिवन जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस। और उसमें भी वी वर द फर्स्ट spiritual organization from the east to be given general consultative status.